दिन भर तारीख 14 अप्रैल दिन शनिवार, मैं हूं वात्सल्य राय। सीरिया हमले पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, पूरा हुआ मिशन। असद ने कहा विरोधियों को हराने का इरादा हुआ और पुख्ता, रूस ने मकसद पर उठाए सवाल।
хочу особо обратить ваше внимание, что никаких объектов по производству химического оружия।
और इंडिया बोल में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर चर्चा, उनकी विरासत पर सियासत को लेकर। एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को हथियाने की कोशिश, तो दूसरी ओर उनकी मूर्तियों को तोड़ने की बढ़ती घटनाएं। क्या है इसके मायने? कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुफ्त फोन कीजिए 1811-7000 और 1811-7001। बतौर मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ लेखक और चिंतक चंद्रभान प्रसाद। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, आदर्श राठौर से। सीरिया में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के संयुक्त हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है, मिशन पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि हमलों को बखूबी अंजाम दिया गया। पेंटागन ने पत्रकारों को बताया कि सीरिया के रासायनिक हथियार कार्यक्रम को इन हमलों से झटका लगा है। पिछले हफ्ते सीरिया के पूर्वी गूटा के डूमा में कथित रासायनिक हमले के जवाब में ये कार्रवाई की गई है। इस हमले के बाद सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने कहा कि अब अपने प्रतिद्वंदियों से लड़ने का उनका इरादा पहले से भी पक्का हो गया है। वहीं सीरिया के सहयोगी रूस ने कहा है कि इस हमले के नतीजे सामने आएंगे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या के अभियुक्तों के समर्थन में आयोजित रैली में हिस्सा लेने वाले 2 मंत्रियों ने बीजेपी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के उन्नाव में कथित गैंगरेप केस में पीड़िता का लखनऊ में मेडिकल टेस्ट करवाया गया। दोनों मामलों को लेकर और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता कुलदीप मिश्र।
जनवरी में जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची के रेप और हत्या को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने भयावह बताया है। इस बीच इस मामले के अभियुक्तों के समर्थन में रैली निकालने वाले जम्मू कश्मीर सरकार के 2 मंत्रियों ने अपनी पार्टी बीजेपी को इस्तीफा सौंप दिया है। बीजेपी महासचिव राम माधव ने कहा कि दोनों मंत्री भीड़ को शांत करवाने पहुंचे थे और उन्हें गलत समझा गया। वहीं उत्तर प्रदेश के उन्नाव के कथित गैंगरेप मामले में सीबीआई ने शनिवार सुबह पीड़िता का लखनऊ में मेडिकल करवाया। मामले में अभियुक्त बांगरमऊ से बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से पूछताछ जारी है। सीबीआई ने उन्हें शुक्रवार को गिरफ्तार किया था।
आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। गजा में चिकित्सा से जुड़े लोगों से जानकारी मिली है कि एक धमाके में कई फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। फिलिस्तीन के सूत्र इसके लिए इसराइल की तोपों से हुए हमले को जिम्मेदार बता रहे हैं। वहीं इसराइली सेना का कहना है कि उसे इस धमाके के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पिछले 2 हफ्तों में गजा और इसराइल की सीमा पर हुए प्रदर्शनों के दौरान इसराइली सेना की गोली से 30 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई थी। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि उन्हें अपने पुश्तैनी घरों में जाने का अधिकार दिया जाए, जो कि अब इसराइल में है। इक्वाडोर के राष्ट्रपति लेनिन मोर्नी ने कोलंबिया के साथ लगती सीमा पर सैन्य ऑपरेशन फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। यहां पर एक हथियारबंद समूह ने 2 पत्रकारों और उनके ड्राइवर की अपहरण के बाद हत्या कर दी थी। उन्होंने इन लोगों पर 3 लोगों की मौत पर 4 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। हत्या से पहले इन तीनों का अपहरण कर लिया गया था। इक्वाडोर के राष्ट्रपति मोरिनो ने कहा कि इक्वाडोर इस गैंग के खिलाफ कार्रवाई करेगा, जिसमें कोलंबिया के एक पूर्व विद्रोही संगठन के सदस्य हैं। वहीं कोलंबिया के राष्ट्रपति युआ मैनुअल सेंटोस ने भी सैन्य अभियान में समर्थन देने का वादा किया है। बॉर्डर पर ये अपराधी इस तरह से अपनी गतिविधियां जारी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि उनका सामना उन 2 सरकारों से हो रहा है जो अपने नागरिकों की हिफाजत और सीमाओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये थे कोलंबिया के राष्ट्रपति के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मिस्र की सेना का कहना है कि केंद्रीय सिनाई में हुए हमले में 8 सैनिकों की मौत हुई है और 15 अन्य घायल हो गए हैं। सेना के प्रवक्ता कर्नल तामेर अल रिफाई ने कहा कि विस्फोटकों वाली बेल्ट पहने लड़ाकों ने सेना के बैरक में घुसने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सभी हमलावर मारे गए हैं। मिस्र में 5 साल पहले इस्लामिस्ट राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को सेना द्वारा हटाए जाने के बाद से सिनाई प्रांत में अराजकता बनी हुई है। सेना ने फरवरी में अराजक तत्वों को खत्म करने के मकसद से अभियान शुरू किया था। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन बोको हराम से जुड़े नाइजीरिया के एक पत्रकार का कहना है कि उन्हें लगता है कि चिबोक कस्बे से अगवा की गई और अब तक लापता 100 से ज्यादा लड़कियों में से सिर्फ 15 ही जिंदा हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। आज शनिवार है और आपको इंतजार होगा इंडिया बोल में चर्चा का। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के जन्मदिन पर चर्चा उनकी विरासत पर सियासत को लेकर। एक तरफ डॉक्टर आंबेडकर की विरासत को हथियाने की कोशिश, तो दूसरी ओर उनकी मूर्तियां तोड़ने की बढ़ती घटनाएं। क्या है इसके मायने? हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं। टोल फ्री नंबर एक बार फिर आपको बता देते हैं 1811-7000 और 1811-7001। स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ लेखक और चिंतक चंद्रभान प्रसाद। स्वागत है आपका और तमाम श्रोताओं का भी। हम चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले दिन की एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर का जिक्र जरूरी है। आज सुबह अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टीवी पर लाइव प्रसारित अपने भाषण में जानकारी दी कि सीरिया के रासायनिक हथियारों के ठिकानों को क्रूज मिसाइलों के जरिए निशाना बनाया गया है। बीते हफ्ते सीरिया में पूर्वी गूटा के डूमा में संदिग्ध रासायनिक हमलों की जानकारी सामने आई थी। सीरिया और रूस ने इससे इनकार किया था, लेकिन अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने कथित हमले के लिए सीरिया को जिम्मेदार बताया था और कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने आज के हमले को लेकर कहा कि यह सीरिया को चेतावनी है। हमले में शरीक फ्रांस ने कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि सीरिया ने लाल रेखा पार कर दी थी। वहीं सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद ने हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए कहा है कि चरमपंथ से संघर्ष को लेकर उनके देश का इरादा और भी पक्का हो गया है। वहीं सीरिया के सहयोगी रूस ने चेतावनी दी है कि हमले के नतीजे सामने आएंगे। ज्यादा ब्यौरा दे रहे हैं नवीन नेगी।
आज रूस जिस वक्त सीरिया में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की ओर से किए गए संयुक्त हमले के मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की मांग कर रहा था, उसी वक्त सीरियाई राजधानी दमिश्क में लोग राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। इसके घंटों पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टीवी पर हमले का ऐलान करते हुए कह रहे थे,
My fellow Americans, a short time ago, I ordered the United States Armed Forces to launch precision strikes on targets associated.
मेरे साथी अमरीका वासियों, कुछ वक्त पहले मैंने सशस्त्र सेनाओं को आदेश दिया है कि वो सीरियाई तानाशाह बशर अल असद के रासायनिक हथियारों के ठिकानों को निशाना बनाएं। ये थे डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। इस हमले में अमरीका को ब्रिटेन और फ्रांस का भी साथ मिला। सीरिया में दागी गई सैकड़ों क्रूज मिसाइलों में से 12 फ्रांस और 4 ब्रिटेन की थी। ब्रिटेन स्थित निगरानी समूह सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि सीरियाई सेना के रक्षा तंत्र ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की 65 से ज्यादा मिसाइलों को रोका है। अमेरिका के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल जोसेफ डनफोर्ड ने बताया कि मिसाइल हमलों के जरिए किन ठिकानों को निशाना बनाया गया।
The targets that were struck and destroyed were specifically associated with the Syrian regime's chemical weapons program.
हमने उन ठिकानों को चुना जहां मासूम आम लोग कम से कम खतरे में रहें। पहला निशाना ग्रेटर दमिश्क का रिसर्च सेंटर था। ये रासायनिक और जैविक युद्ध तकनीक विकसित करने का केंद्र था। दूसरा निशाना होम्स के पश्चिम में रासायनिक हथियारों का स्टोर था। तीसरा टारगेट दूसरे टारगेट के पास ही रासायनिक हथियारों का स्टोर था। ये थे जनरल जोसेफ के शब्द। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे और फ्रांस ने सीरिया में की गई कार्रवाई को जरूरी बताया है। जर्मनी ने भी इसका समर्थन किया, लेकिन जर्मनी की मीडिया ने सवाल किया कि कथित रासायनिक हमले में जारी अंतर्राष्ट्रीय जांच का इंतजार क्यों नहीं किया गया। वहीं रूस ने हमलों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे उकसावे वाली कार्रवाई बताया। रूसी रक्षा मंत्रालय में मेन ऑपरेशनल डायरेक्टर ऑफ द जनरल स्टाफ के प्रमुख सर्गे रुदस्कॉय ने कहा,
хочу особо обратить ваше внимание, что никаких объектов по производству химического оружия в Сирии нет.
मैं जोर देकर कहना चाहूंगा कि सीरिया में रासायनिक हथियार तैयार करने वाला कोई उपक्रम नहीं है। अमेरिका की ये उकसावे वाली कार्रवाई जाहिर करती है कि उद्देश्यपूर्ण जांच में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। ये थे रूसी अधिकारी सर्गेई रुदस्कॉय के शब्द। रूस ने चेतावनी दी है कि इस हमले के नतीजे सामने आएंगे। चीन ने हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है और ईरान ने भी इसकी निंदा की है। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर इन हमलों को सफल बताया है। साथ ही उन्होंने सहयोग के लिए फ्रांस और ब्रिटेन को धन्यवाद भी दिया है।
रिपोर्ट सुना रहे थे नवीन नेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए फिलहाल फोन लाइन पर न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सलीम रिजवी। सलीम साहब, स्वागत है आपका। ट्रंप कह रहे हैं कि मिशन पूरा हुआ, लेकिन हमले को लेकर पूरी दुनिया दो धड़ों में बढ़ती दिख रही है। हासिल क्या दिख रहा है इसका?
لیکن یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جس طرح کی جو تصویریں آ رہی تھیں, ویڈیو دیکھ رہے تھے سیریا کے بارے میں یہاں پہ لوگ, تو راشٹرپتی ٹرمپ نے یہ ایک اسی سب کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے, کچھ لوگ یہ سوال ضرور اٹھا رہے ہیں کہ بھائی جب وہاں پہ جو انویسٹیگیٹرز ہیں پہنچ رہے تھے تو اس سے پہلے, جب اپنا کام وہ شروع کرنے سے پہلے ہی یہ اسٹرائکس کیوں ہو گئیں. تو اس پہ اب یہاں پر یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی روس نے ایک ایمرجنسی سیشن بلایا ہے, اس سے تھوڑی دیر میں شروع ہوگا.
جی
یہ یہاں پر ظاہر ہے کچھ سوال کچھ لا میکرز بھی کر رہے ہیں کانگریس مین کی, بھائی یہ جو ہے جب کوئی ثبوت نہیں تھا تو اس طرح کیوں کیا گیا حملہ. لیکن زیادہ تر یہاں پر سپورٹ ہے, ڈیموکریٹس اور ریپبلکن دونوں سپورٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بھائی کچھ نہ کچھ تو کیا جانا ضرور تھا راشٹرپتی اسد کے خلاف, جس طرح سیریا میں اس طرح بچوں اور دوسرے لوگوں کو جو مہیلائیں اور بچوں پر جو حملے ہوئے ہیں.
جی ایک طرف امریکہ, برٹین, فرانس, جرمنی سمرتھن میں بات کر رہے ہیں, دوسری طرف چین سوال اٹھا رہا ہے, ایران سوال اٹھا رہا ہے, روس تو چیتاونی کے سر میں بات کر رہا ہے. کیا استھتی کس طرف جاتی ہوئی دکھ رہی ہے فی الحال یہاں سے؟
دیکھیں یہ کہا جا رہا ہے, جیسے کہ پینٹاگن کی بریفنگ میں بھی آپ نے سنا کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے سکسیسفلی سارے جو ٹارگٹس تھے وہ ہٹ کر لیے ہیں. اور ابھی جیسے آپ نے یہ بھی دیکھا راشٹرپتی ٹرمپ نے کہا مشن اکمپلشڈ, تو یہ جو ایک مشن تک آ جا رہا ہے وہ اکمپلشڈ ہو گیا, وہ سکسیسفلی مشن پورا ہو گیا ہے. لیکن یہ اس پہ مذاق بھی اڑ رہا ہے کہ بھائی مشن اکمپلشڈ کا جو فریز ہے آپ کو یاد ہوگا عراق وار کے بعد اس وقت کے راشٹرپتی جارج ڈبلیو بش نے یہ کہا تھا, اور اس کے بعد ظاہر ہے عراق میں حالات بہت عرصے تک بہتر نہیں ہوئے تھے. تو وہی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کا فریز انہوں نے کیوں یوز کیا اور کیا یہ بھی ان کا وہی مومنٹ ہے. لیکن یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ ساری چیزیں جو ہیں اس طرح تو کنٹین کر لیا ابھی جس طرح سب نے مل کے فرانس اور
جی
برٹن نے, تو لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ کیا اتنا بڑا قدم ہوا جس کی پہلے سے وعدہ کیا جا رہا تھا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ
قدم پر سوال اٹھ رہے ہیں. بس سنکشیپ میں آپ سے یہ میں جاننا چاہوں گا سلیم صاحب کی اب بات یہیں تھم جائے گی؟
لگتا نہیں, جس طرح انہوں نے اوپن اینڈڈ رکھا ہے کہ بھائی یہ تو پہلا ایک مشن ہے اور اگر اس طرح ہوئے اور حملے تو اور اسٹرائکس ہو سکتی ہیں, ایسے اشارے مل رہے ہیں. لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ ابھی اتنے بڑے پیمانے پہ حملے نہیں کیے گئے جس سے کہ راشٹرپتی اسد جو سیریا کے ہیں ان کو سے ہٹا دیا جائے.
بہت شکریہ سلیم صاحب. شروتاؤں آپ اس خبر کا لگاتار اپڈیٹ bbchindi.com پر حاصل کر سکتے ہیں. اور اب چرچا انڈیا بول کے آج کے وشے کی. آج بابا صاحب ڈاکٹر امبیڈکر کی 127ویں جینتی ہے. ہر راجنیتک دل میں ایک ہوڑ دکھتی ہے ان کی وراثت حاصل کرنے کی. آپ کو سناتے ہیں کہ آج پردھان منتری نریندر مودی نے بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو امبیڈکر کی جینتی کے موقع پر کیا کہا.
پیارے بھائیو بہنوں, ایک غریب ماں کا بیٹا, اتی پچھڑے سماج سے آنے والا یہ آپ کا ساتھی اگر آج دیش کا پردھان منتری بھی ہے تو یہ بھی بابا صاحب کی ہی دین ہے. ساتھیوں میرے جیسے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی آکانکھاؤں کو, ان کی امیدوں کو, ان کے ایسپریشنز کو, ابھیلاشا کو جگانے میں بابا صاحب کا بہت بڑا یوگدان.
یہ تھے پردھان منتری نریندر مودی. پردھان منتری کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کی سرکار نے بابا صاحب کو جتنا مان دیا اتنا کسی اور دل کی سرکار نے نہیں دیا. لیکن ان کی سرکار اور پارٹی پر سوال بھی اٹھتے رہے ہیں. بہوجن سماج پارٹی کے پرمکھ مایاوتی نے آج کیا کہا وہ بھی سنیے.
ورتمان میں بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو امبیڈکر کی آئے دن جگہ جگہ پر مورتی توڑے جانے کے ساتھ ساتھ ان کے انویائیوں کا سمویدھانک حق چھیننے وہ ان پر بھاری جرم جاتی کرنے والی خاص کر بی جے پی و ان کے کیندر و راجیہ سرکاروں کو اور وشیش کر پردھان منتری شری نریندر مودی کو بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو امبیڈکر کے جیون سے جڑے کچھ استھلوں کو کیول سمان دینے سے و ان کے نام پر کچھ یوجنائیں آدھی چلانے سے بھی ان کے انویائیوں کا وکاس و اتھان نہیں ہو سکتا ہے.
یہ تھی مایاوتی جو بابا صاحب کی مورتیوں کو توڑے جانے کا ذکر کر رہی تھی. مورتی توڑنے کی گھٹنا کسی ایک شہر, کسی ایک ضلع, کسی ایک کمشنری یا ایک پردیش کی نہیں ہے. हाल में पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिण भारत के राज्यों तक हर जगह इस तरह की खबरें सामने आई हैं। स्थिति यह है कि आज दिल्ली पुलिस को हर मूर्ति को सुरक्षा दिल्ली में देनी पड़ी, उत्तर प्रदेश के बदायूं में लोहे का जाल लगाना पड़ा। चंद्रभान जी स्टूडियो में मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं एक श्रोता से जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी, नाम बताइए अपना और बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय।
हेलो
जी, नमस्कार, स्वागत है आपका।
आदाब, मैं दिलावर हुसैन कादरी, मेरा आवाज जैसलमेर राजस्थान से अर्ज कर रहा हूँ।
जी कादरी साहब
जी, मैं अपनी बात का आगाज इन अल्फाज के साथ करना चाहता हूँ। हवा यही जो रहेगी तो ऐ नकी वे बार कहाँ से आएगी, सहना यहाँ चमन के लिए गलत रविश मनाजिल का बोझ बढ़ाती है, मुसाफिर हो रविश कारवां बदल डालो।
जी
वास्तव जी अर्ज ये करना चाहता हूँ अम्बेडकर जी के साथ, न तो कांग्रेस ने न्याय किया है, न बाद में वाली हुकूमत ने, बीजेपी हुकूमत ने न्याय किया। अम्बेडकर ने जो हमें संविधान की जो दौलत दी थी, हमारी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी ने संविधान के ऊपर हथौड़ा चलाने का काम किया। अम्बेडकर किसी एक ही दौलत नहीं है, किसी एक ही विरासत नहीं है, किसी पार्टी की विरासत नहीं है। जो अम्बेडकर जी के साथ आज हो रहा है वो हथियाने के लिए, सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए ये काम हो रहा है। लेकिन अम्बेडकर जी के साथ अगर न्याय करना तो इस देश को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो नागरिकों के लिए चार वरदान हमारे प्रस्तावना में है, उन प्रस्तावना के
प्रस्तावना के हिसाब से जाना पड़ेगा। अपनी बात रखने के लिए बहुत शुक्रिया चंद्रभान जी। जो बात इन्होंने कहा, बाबा साहब की विरासत तमाम दल लेने चाहते हैं, उनके चेहरे हमारे सामने हैं, लेकिन जो मूर्तियों को निशाना बनाते हैं वो सामने नहीं आते, छुपे रहते हैं। ये कैसी सियासत है, क्या है इसके मायने, कैसे देखते हैं आप?
देखिए, पॉलिटिकल लेवल पर तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और होड़ मची है बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत को क्लेम करने की, लेकिन समाज में क्या हो रहा है? समाज में अम्बेडकर सुरक्षित नहीं है, समाज में अम्बेडकर के मानने वाले सुरक्षित नहीं हैं। और एक नई चीज़ पिछले 2-3 सालों से हो रही है, पहले उन दलितों पर हमले होते थे जो कमजोर थे
जी,
अब उन दलितों पर हमले हो रहे हैं जो राइजिंग हैं,
मतलब जो पहचान बना रहे हैं उनको हमला किया जा रहा है, उनको टारगेट बनाया जा रहा है। क्या वजह देखते हैं आप इसकी?
देखिए, कास्ट और राष्ट्र में जो संघर्ष है बहुत अभी डीपनिंग, इट्स डीपनिंग, यानी जो अम्बेडकर ने एक राष्ट्र दिया जो कास्ट को कमजोर कर रहा था, तो जिनके लिए कास्ट राष्ट्र से सुपीरियर है और हमारे लिए राष्ट्र सुपीरियर, तो कास्ट और राष्ट्र में एक संघर्ष हो रहा है
और वो संघर्ष दिख रहा है, वो चाहे हमले के रूप में दिखे, चाहे वो मूर्तियों पर हमले के रूप में दिखे।
जी हाँ।
चंद्रमान जी, कुछ और श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी, अपना नाम बताएं और अपनी बात रखें।
मेरा नाम अवधेश राम है।
जी अवधेश जी, क्या कहना चाहते हैं?
मैं रुदलपुर से बोल रहा हूँ, गोपालगंज जिले से।
जी अवधेश जी, अपनी बात रखें।
मैं आपका पुराना श्रोता हूँ।
जी जी, बताएं, अपनी बात रखिए अवधेश जी।
सर, बात ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो अभी अनुसूची जो जगह हुआ है और पिछड़ा भी साथ में जगह हुआ है, इसके अलावा अब कोई चाहे कि अलग से राजनीति कर ले तो नहीं हो सकता, इसलिए आज सबको बाबा साहब का नाम याद आ रहा है। नहीं तो आप पिछले में जाइए तो बाबा साहब का मोदी जी नाम भी नहीं लेना चाहते थे।
जी जी, ये आपका कहना है कि मोदी जी पहले नाम भी नहीं लेना चाहते थे। एक और हमारे साथ श्रोता जुड़े हुए हैं, उनकी बात भी हम सुन लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए।
हाँ सर, नमस्कार।
जी नमस्कार।
सगोरिया स्कूल घाटी मंदसौर मध्य प्रदेश से बसंती लाल सूर्यवंशी बोल रहा हूँ सर।
जी बसंती लाल जी, बताइए क्या कहना है आपको?
जी मोदी जी बाबा साहेब अम्बेडकर बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर दलितों पे अत्याचार होते तो इनकी हुकूमत में अत्याचार क्यों हो रहा है, ये जानना चाह रहा हूँ।
ये सवाल ये जानना चाह रहे हैं बसंती लाल जी, चंद्रबान जी, की आखिर अत्याचार क्यों हो रहे हैं जब मोदी जी बार बार अम्बेडकर साहब की बात करते हैं। वहीं अवधेश राम जी का कहना है कि आज की राजनीति की वो स्थिति है कि डॉक्टर आम्बेडकर के नाम के बिना राजनीति नहीं हो सकती, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या प्रतीकों के जरिए बाबा साहेब की विरासत को साधा जा सकता है, मसलन उनके नाम के साथ उनके पिता का नाम जोड़ने से, उनकी मूर्ति का रंग बदलने से, उनके नाम पर स्मारक बनाने से, कैसे आप देखते?
कभी ये बात चलती थी, पर आज का दलित जिसके हाथ में स्मार्टफोन है, जो थोड़ी बहुत इंग्लिश जानता है, जो प्रोफेशंस में गया है, अब इन सब चीज़ों के में फंसने वाला नहीं है। ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है, समाज में दलितों पर, दलितों के सम्मान पर चोट हो रही है, अगर उसको कंट्रोल नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश में दलित आंदोलनकारियों पर हमले हुए हैं और किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो जब तक ग्राउंड लेवल पर एक्शन नहीं होगा तो बाकी सब चीज़ें बताने, करने, बाबा साहब को माला पहनाने से दलित अब इम्प्रेस्ड होने वाला नहीं है।
जी, इम्प्रेस होने वाला नहीं है आप कह रहे हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि एक्शन दिखाई भले ही ना दे, लेकिन जब सरकारें बात करती हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी बात करते हैं, तो कई बार तो ऐसे मौके भी आए हैं कि उनकी आंखों से आंसू निकले हैं।
पर लगता है कि जो राज्य हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर लिए हैं कि प्रधानमंत्री कुछ भी कहें।
यानी आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री सीरियस हैं, बाकी जो मुख्यमंत्री हैं वो सीरियस नहीं हैं।
अगर प्रधानमंत्री की हर बात को माने, वो मन से सही कहते हैं, तो उनके मुख्यमंत्री, उनके मंत्री प्रधानमंत्री से अपनी आज़ादी घोषित कर दिए हैं,
यानी सवाल उनसे होने चाहिए। कुछ और श्रोता भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए।
जी, मैं हरबिलास सिंह तोमर मुरैना मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ।
जी तोमर साहब, क्या कहना है आपका?
जी, मेरा ये कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर किसी की जाति नहीं और न ही किसी की धरोहर, वो तो सारे देश के थे मसीहा और सबके लिए हैं सर्वोपरि। जहाँ तक मूर्ति तोड़ने की बात है, तो ऐसे लोग किसी पार्टी विशेष के नहीं होते, ये तो अपराधी होते और इन पर देशद्रोह का मामला चलना चाहिए। मूर्ति तोड़ने की घटना पर किसी पार्टी विशेष पर आरोप लगाना सरासर गलत है, ये तो राजनीति
किसी पार्टी पर आरोप लगाना सरासर गलत है, तोमर साहब का कहना है। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। जी, अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए।
हेलो, मैं हाजी जलील अहमद पश्चिम उत्तर प्रदेश यूपी से।
जी
जी, मेरा कहना ये है कि सर, ये नरेंद्र मोदी जो है, ये भैयारी आंसू बहा रहे हैं। बीजेपी में अगर आप देखें 2014 के बाद, तो दलितों पर बहुत अत्याचार बढ़े हैं। आप ऊना की घटना देख लीजिए, गुजरात की ही देख लीजिए, कि एक दलित ने जो अपनी मूंछ ठाकुरों जैसी रखी है, उसकी हत्या हुई। अभी एक घोड़ी जिस खरीदी थी, उसकी हत्या हुई। बहुत अत्याचार जो है, ये दलितों पर बढ़े हैं।
दलितों पर अत्याचार बढ़े हुए हैं, यानी समरसता समानता के जो नारे हैं उनके बीच में कुछ कड़ियां टूटती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन ये बात चंद्रमान जी, आपको याद होगा कि आज की बात नहीं है, 1990 के दशक के आखिर में अरुण शौरी साहब की एक किताब आती है, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड, उस पर विवाद होता है और अब बहस एक नए मोड़ पर है। जैसा कि तोमर साहब अभी जो हमारे लिसनर थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर आम्बेडकर किसी की जागीर नहीं है, लेकिन बहस अब एक नए मोड़ पर चली गई है। गुजरात में आज जिग्नेश मेवाड़ी के समर्थक बीजेपी नेताओं को बाबा साहेब की मूर्ति के पास जाने से रोकते हैं। उधर दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद भी हैं, दलित सांसद, जो पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से अपने साथ हो रहे व्यवहार की शिकायत भी करते हैं।
देखिए, एक ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि अम्बेडकर किसी एक जाति या एक धर्म या एक क्षेत्र विशेष के व्यक्ति थे, वो तो पूरे भारत के थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह के लोग दलितों पर हमले कर रहे हैं वो, और जिस तरह के लोग शासन कर रहे हैं, उसमें कुछ एक संबंध दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए हर दलित, जिससे भी चंद्रशेखर रावण क्यों जेल में बंद है सहारनपुर में, उसने कास्ट पर हमला किया है एक अच्छे राष्ट्र के लिए
जी,
तो उस पर राष्ट्र विरोधी कानून के तहत बंद क्यों कर दिया गया? सरकारें उसको छोड़ती क्यों नहीं? वो तो अंग्रेजी पढ़ा रहा है गांव में जाकर के, अत्याचार हो रहा है तो उसका विरोध कर रहा है। तो जो राष्ट्र के लिए लड़ रहा है उसको आप जेल में रख रहे हैं। और बात
तो क्या, ये जिन लोगों को जेल में रखा जा रहा है, आप उन्हें उन लोगों के रूप में देख रहे हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं?
एक्चुअली जो अम्बेडकर की विरासत को, एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन,
या उन्हें मजबूत करना,
हाँ
वो लोग हैं। चंद्रमान साहब, आपको रोकूंगा, एक श्रोता हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं, श्रोताओं का मंच है, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए। जी
हेलो,
जी नमस्कार, अपना नाम बताइए।
नमस्कार, जय भीम।
जय भीम, अपना नाम बताइए। नमस्कार,
मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, आमरण मेरा गांव है मोरबी के पास।
जी,
मैं कहना ये चाहता हूँ साहब।
जी, आप अपना नाम बताए।
मेरा नाम डीके परमार है।
हाँ परमार साहब, बताइए।
मैं 40 साल से आपको सुन रहा हूँ।
जी परमार साहब, अपनी बात रखिए।
मैं सब कहना ही चाहता हूँ कि ये 2019 की बाबत के लिए अम्बेडकर का नाम हो रहा है, राज्य के मकसद के लिए हो रहा है, पर धरोहर का काम नहीं कुछ होता।
जी, एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं।
हेलो
जी, अपना नाम बताएं, अपनी बात रखें।
वासिले जी नमस्कार, मैं पठानकान गज्जू बोल रहा हूँ, कृतनौरिया बाड़मेर से।
जी साहब, बताइए, अपनी बात रखिए।
जी सर, की सरकार आई उनके बाद में अम्बेडकर की जो मूर्तियां ये ढाई क्यों जाती है,
क्यों ढाई जाती है, यही हमारा भी सवाल है आज का। हमें सोशल मीडिया पर भी कई कमेंट मिले हैं, फेसबुक पर आई कुछ टिप्पणियों को पढ़ देता हूं। सुनील ठाकुर लिखते हैं कि माल्यार्पण और योजना बनाने से दलितों का भला नहीं होगा। मदन प्रजापति की राय है कि मूर्तियां सियासत चमकाने के लिए लगाई जाती है। जुनैद अली लिखते हैं कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो दलितों का उत्थान नहीं चाहते लेकिन दलित वोट पर कब्जा रखना चाहते हैं। चंद्रबान जी, एक ऐसी विरासत जिसे सब सहेजने का दावा कर रहे हैं, जिसे सब अनुकरणीय बता रहे हैं, सब हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जैसी बात आई अभी परमार साहब ने कहा 2019 के लिए सब कुछ हो रहा है, क्या आप भी ऐसे देख रहे हैं?
देखिए वो तो मैं कहना ठीक है कि नहीं पता नहीं, पर जो दलित नहीं हैं और दलितों के प्रति चिंतित हैं वो दलित डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, पर जो दलित हैं वो अपने डिग्निटी की बात कर रहे हैं कि हमारी डिग्निटी सुरक्षित नहीं है। तो आज डेवलपमेंट की बात को थोड़ा सस्पेंड रखें और दलित सम्मान को सुरक्षित रखें।
जी, सम्मान को सुरक्षित रखने की आपने बात की, लेकिन जो तरीके हैं, एक छोटी सी टिप्पणी चाहूँगा, जो तरीके फिलहाल इस्तेमाल हो रहे हैं अलग अलग तरीके से, क्या आपको यही सही तरीके दिख रहे हैं?
नहीं बिल्कुल, ये तरीके तो बिल्कुल शांतिपूर्ण होने चाहिए, तरीके लॉजिकल होने चाहिए और दलित को एक देश का बराबर का नागरिक हमें स्वीकार करना होगा, तभी हमारी कोई भी बात कहीं भी बाबा साहब के बारे में सच निकलेगी।
यानी नारों से बात नहीं बनेगी, केवल मूर्तियों को माला पहनाने से बात नहीं पड़ेगी, मूर्तियों के लिए आदर भी करना होगा और रात में छुप छुप के उसको तोड़ना भी नहीं होगा। आप क्या ये कहना चाहते हैं?
जी हाँ बिल्कुल, आप अम्बेडकर पर हमले करें उनकी मूर्ति पर और शहरों में उस पर माल्यार्पण करें, इसमें अंतर विरोध है और इस बात को अब दलित समझ रहा है।
चंद्रबान जी, इस चर्चा को हम आज यहीं विराम देते हैं, आपका और तमाम श्रोताओं का शुक्रिया। और अब कॉमनवेल्थ खेलों का अपडेट भी देते हैं, जहां भारत के खाते में आ चुके हैं कुल 25 गोल्ड मेडल। आज का दिन बड़ा अच्छा रहा, सुनिए रेहान फजल की रिपोर्ट।
इसे कहते हैं सोना बरसना। क्या दिन था भारत के लिए। शुरुआत हुई मैरी कॉम से, जब उन्होंने नॉर्दर्न आयरलैंड की क्रिस्टीना ओहारा को बिना कोई जोखिम उठाए अंकों के आधार पर हरा दिया। शुरू से ही उन्होंने डोमिनेट किया। हारा के पास कद का एडवांटेज था, लेकिन मैरी कॉम के अनुभव के आगे उनकी एक न चली। मुकाबले के तुरंत बाद मैरी कॉम ने बीबीसी से बात की।
बहुत अच्छा है, बहुत एक्सपीरियंस, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है प्लानिट एंड यू नो ऑल द स्ट्रेटजी ऑल थिंग्स, सो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी टू बिकॉज़ आई हैव
लॉट। आप श्योर थी कि आप जीतेंगी?
हां ये देयर कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस, बट एनीथिंग कैन हैपन इन द इनसाइड द रिंग।
बॉक्सिंग में एक अप्रत्याशित स्वर्ण आया गौरव सोलंकी के मुक्कों से। उन्होंने नॉर्दर्न आयरलैंड के मुक्केबाज की एक न चलने दी, लेकिन इस चक्कर में उनके कान के नीचे एक कट लग गया जिसमें से खून बहने लगा।
जी बहुत खुश हूँ, अभी ये खुशी नहीं है, अभी और भी रास्ते खुलते हैं इसके आगे, खुशी वहाँ होगी जब मैं ओलंपिक पोडियम पे तिरंगा ले रहूंगा।
शाम होते होते विकास कृष्णन भी 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक ले आए। निशानेबाजी में पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में संजीव राजपूत ने स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों के जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने अपना पुराना प्रदर्शन दोहराते हुए 86.47 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया।
जी बहुत अच्छा लग रहा है, आज सारी तरह जो है मेरी अच्छी रही है, मतलब काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस थी और सिर्फ 1 सेंटीमीटर से मेरा पर्सनल बेस्ट रहा है, 86.48 मीटर था और आज 86.47 मीटर लगा है।
कुश्ती में 125 किलो वर्ग में सुमित कुमार को उस समय स्वर्ण पदक मिला जब उनके नाइजीरिया के प्रतिद्वंदी ने घायल होने की वजह से उन्हें वॉकओवर दे दिया। विनेश फोगाट ने विश्व चैंपियन रही कनाडा की जेसिका मैकडोनल्ड को हराकर भारत के लिए कुश्ती में 5वां स्वर्ण पदक जीता। पदक जीतते ही हमने उनसे बात।
बहुत अच्छा था सर, हम 3 दिन से वेट करें गोल्ड का कि हम लड़कियों में गोल्ड आए, लेकिन सिल्वर पे जा रहा था तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैंने गोल्ड पे फिनिश किया। और जो हिंदुस्तान की मेरे से उम्मीद थी, जो मेरे कोचेज की मेरे से उम्मीद थी, जो मेरे टीममेट्स मुझे चाहते थे, वो मैं कम्पीट कर पाई, इस बात की बहुत खुशी।
महिला टेबल टेनिस सिंगल्स में मनिका बत्रा ने सिंगापुर की मांग यू यू को हरा कर स्वर्ण पदक जीता। एकमात्र निराशा हॉकी में रही, जहां भारत की पुरुष और महिला टीमें इंग्लैंड से हार कर चौथे स्थान पर रहीं। रेहान फजल, बीबीसी गोल्ड कोस्ट।
चलते चलते मुख्य समाचार आदर्श राठौर से।
बीबीसी समाचार। सीरिया में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के संयुक्त हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है, मिशन पूरा हुआ। इस हमले के बाद सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने कहा है कि अब अपने प्रतिद्वंदियों से लड़ने का उनका इरादा और भी पक्का हो गया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे राजेश चौहान, फेसबुक प्रसारण में मदद की सिंधु वासिनी ने। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक सीरिया समेत तमाम खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।